भवभर्ता मुक्ति विधाता हो, मैं नमो तुम्हें मेरे स्वामी, मुझको भी सिद्धि प्रदाता हो। वह राजग्रही नगरी धन्य है, त्रैलोक्य गुरु जाते जन में है, धन्य सुमित्र पिता माता सो मां भी धन्य हुई जग में। राजग्रही नरेश, सुमित्र और महारानी सोमावती के, सोमा देवी के तीर्थंकर पुत्र, जैन शासन के 20वें तीर्थंकर के रूप में जन्मे भगवान मुनि सुब्रत नाथ रहे। असली में आपको बताऊं तो जब हम सन 2002-03 में भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर गए, पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता के साथ हम सब ने राजग्रही तीर्थ की 22 बार और जब भी सभा होती थी भक्तों से हम प्रश्न करते थे, राजग्रही नगरी की क्या विशेषता है, राजग्रही का क्या इतिहास है, सबके मुख से एक ही बात सुनने को मिलती थी, राजग्रही नगरी में भगवान महावीर का समोसरण आया था। हमें किसी बिहार में रहने वाले भी ने भी नहीं बताया कि मुनि सुरतनाथ भगवान की जन्मभूमि है। और ज्ञानमती माता जी को ये बात सदैव खटकती रही कि भगवान महावीर का समोसरण तो अभी 2500 साल पहले ही आया है और मुनि सुरतनाथ भगवान जो 9-10 लाख साल पहले जन्म ले लिए उनकी बात को लोग भूल गए। भगवान मुनि सुब्रतनाथ के जन्म से पावन वह तीर्थ है, इस बात का पूरे संसार को ज्ञान कराने के लिए वहां पर 11.5 फुट के भगवान मुनि सुब्रतनाथ की प्रतिमा बनाई गई, स्वामी जी ने बनाया और हमारे संघपति अनिल कुमार जी जैन की ओर से मंदिर बना, प्रतिमा पधराई गई, पंच कल्याणक महोत्सव हुआ। तब से राजग्रही नगरी में लाल मंदिर के परिसर में वह मूर्ति विराजमान है और शनिग्रह अरिष्ट निवारण के लिए लोग जाते हैं, मुनि सूरत भगवान की आराधना करते हैं और इस बात को अब सब लोग अच्छे से जान गए हैं कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जन्मभूमि राजग्रही तीर्थ है। आप कम से कम जब भी तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों की श्रृंखला चलेगी तो अयोध्या से लेकर कुंडलपुर तक 16 जन्मभूमियों की संख्या में राजग्रही नगरी का नाम सबको याद रखना पड़ेगा। जैसे बच्चों को 24 भगवान के नाम उनके चिन्ह याद कराए जाते हैं, बड़ा नटखट और अच्छा बच्चा यहाँ पर आया हुआ है, कहाँ से आए आप लोग? हाँ, ये बच्चा आप ही क्या? तो हाँ, तो आप बताओगे कि महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? है? हाँ, ये तो 11 साल के हो गए। महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? शेर चिन्ह है। देखो, छोटे से बच्चे को भी कम से कम याद है। ऐसे ही अब इन बालकों को आज यहाँ से एक कार्ड ले जाना और सब भगवान की जन्मभूमियों को याद दिला देना। अब आगे जब आएंगे और भगवान की जन्मभूमियों के नाम बताएंगे तब अच्छे अच्छे गिफ्ट दूसरे मिलेंगे, समझ गए? हाँ, तो आज आवश्यकता है कि इन भगवंतों की जन्मभूमियों का परिचय हम बच्चे बच्चे को प्रदान करें। आपका बच्चा स्कूल जाता है, जिसे पढ़ना भी नहीं आता, उसके पास एक आइडेंटिटी कार्ड रहता है और उसके घर का नाम, माता पिता का नाम, टेलीफोन नंबर सब रहता है कि नहीं? तो कहीं बच्चा गुम जाए तो कम से कम उस कार्ड से अपने घर तक आ सकता है, उसको कोई भी चाहे पुलिस के ही लोग पहुंचाएं, लेकिन उसे उसके घर तक पहुंचा देंगे। इसके लिए उसके पास आइडेंटिटी कार्ड होता है। अब आपके भगवंतों के पास पहुंचाने के लिए आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, आपको पूछना पड़ता है, किसी तीर्थ पर जाकर वहां के कार्यालय से पूछना पड़ता है, यहाँ कितने मंदिर हैं, यहाँ कौन कौन से स्थान है हमें देखने के लिए, जानने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो ये सब स्वाध्याय कीजिए, और इन सब की प्रेरणा स्रोत ज्ञानमती माता जी हैं। बात यह है कि ज्ञानमती माता जी केवल मनोरंजनकारी प्रवचन नहीं करती, ये सबको बताती हैं प्राचीन इतिहास की बातें, कहाँ कौन से भगवान का जन्म हुआ, कब किसका कल्याणक है, और कब हमें लाडू चढ़ाना चाहिए, कब हमें जन्म कल्याणक मनाना चाहिए। अभी देखो 12 जून को ज्येष्ठ कृष्णा बारस को अनंतनाथ भगवान के जन्म और तप कल्याणक आ रहे हैं, अयोध्या में जन्मे हैं वे भगवान। अभी से माता जी कहने लग गई हैं कि चंदामती 12 तारीख को अनंतनाथ भगवान की टोंक पे जरूर चलना है, और वहाँ खूब बड़ा अभिषेक करना है, और भगवान का जन्म कल्याणक अच्छे से मनाना है। ये सब कौन बताता है? जन्म कल्याणक मनाने के लिए हमारे अध्यात्म जन लखनऊ से हर बार अयोध्या आते हैं। क्या हम भगवान के जन्म को मनाकर अपने जन्म को धन्य करें, अपना जन्म पावन करें, और ऐसा जन्म कर लें कि हमें भी एक दिन ऐसी माँ से जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो जिन्हें 16 सपने दिखते हैं, है ना? 16 सपने देखने वाली माँ से जन्म लिया तो फिर क्या होगा? तीर्थंकर बनेंगे। जब भगवान के पास जाना तो और कुछ मत मांगना। लोग आज कहते हैं मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन इतनी फास्ट हो जाए कि वो जल्दी से जॉब लग जाए उसकी, ये सब तो रास्ते की भूसी है। जैसे कोई किसान बीज बोता है तो वो भूसी के लिए थोड़ी बोता है, वो देखता है कि खेत में गेहूं चावल लहलहाने लगे, भूसी तो उसके बीच में आ ही जाती है। ऐसे ही भगवान के दर्शन मोक्ष की प्राप्ति के लिए, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तब ये मांगना क्या भगवान के रूप में जन्म लें ऐसी माँ से जिन्हें 16 स्वप्न दिखाई दें, और या फिर हम ऐसे स्थान में जन्म लें जहाँ पर हमें दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तब समझो हमारा जन्म लेना भगवान के दर्शन करना सार्थक हो जाता है। इसीलिए हम समय समय पर ऐसे विषयों को लेते हैं कि जिससे अछूते विषय का भी ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि भाई देखो हम तो ज्ञानमती माता के पास 24 घंटे रहते हैं। इनका यही कहना है प्राचीन इतिहास को नए रूप में दर्शन कराएं। तो अब भगवान मुनि सुव्रत की बात जो लोग भी पारस चैनल में सुन रहे हैं, हमारे ऋषभदेव चैनल में उपस्थित होते हैं, सबके गले तो कम से कम ये उतर ही गई है कि मुनि सुव्रत नाथ भगवान ने राजगृही में जन्म लिया। मुझे भी इतना नहीं पता था हम मुनि सुव्रत नाथ भगवान के चरित्र को लेके बैठे थे। जब हमने उत्तर पुराण खोला कि उनके तीसरे भव पहले से जो कहानी जुड़ी है कि वे चंपापुर के राजा हरिवर्मा थे, उन्होंने एक बार एक मुनिराज के पास जाकर उनका सार गर्भित प्रवचन सुना तो वे वैरागी होकर दीक्षा ले लिए, एक बार में दीक्षा ले लिए। यहाँ तो कई कई बार प्रवचन सुनो तो भी दीक्षा लेने के भाव नहीं होते, लेकिन वो चतुर्थ काल में थे, चतुर्थ काल में भाव बड़े अच्छे रहते थे, और दीक्षा लेकर के जा करके स्वर्ग में 14वें स्वर्ग में प्राणत इंद्र बन गए, और उसके बाद में वहां 20,000 सागर की आयु बिता करके आ करके राजगृही नगरी में जन्म ले लेते हैं। अब हमने आपको गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, ये सब बातें बताई। अब चूंकि अब उन्हें हम भगवान बनते देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखो भगवान मुनि सुव्रत नाथ की बहुत सुंदर काली मरगज मणि की प्रतिमा बन करके आई है, जो जिन मंदिर में विराजमान होने वाली है उनकी वेदी भी इतनी सुंदर बनी है, खूब अच्छे भावों से युक्त वेदिका बनी है, उसमें ये विराजमान हो जाएंगे। फिर आप इनको शनिग्रह अरिष्ट निवारक के नाम से मुनि सूरतनाथ भगवान की आराधना करेंगे। तो केवल ज्ञान में भगवान समो शरण के अंदर रहते हैं, समो शरण पूरे आर्यखंड के अंदर विहार करता है, और जो भी तीर्थंकर भगवान होते हैं वे भव्यों को अपनी दिव्य ध्वनि का पान कराते हुए उपदेश देते हैं, जिससे असंख्य भव्य प्राणी इस संसार से तिर जाते हैं। और उसके बाद में वर्णन आया कि जब भगवान मुनि सूरतनाथ की आयु 1 महीने शेष रह गई, तो चूंकि भगवान तो मनापरिय ज्ञानी हो चुके थे और अब मोक्ष जाने वाले थे, तो कैसे कैसे उनके भावों की श्रृंखला बढ़ती है, उनके कर्म कटते हैं और वे 14 गुण स्थान को पार करके सिद्ध भगवान बनते हैं। उसका वर्णन करते करते हमने अपने जिज्ञासु भाई बहनों को गुणस्थान की परंपरा, गुणस्थान क्या होते हैं, गुणस्थान कितने होते हैं, ये सब बताना शुरू किया। तो कल हमने आपको 4 गुणस्थान बताए थे, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र और अविरत सम्यक दृष्टि, जो आज संसार के अंदर सबको होते हैं। अधिकतर लोग मिथ्यात्व में बिचारे पड़े रहते हैं, वहां भी गए, वहां सिर पटका, वहां गए, वहां ऐसे करके मिथ्यात्व में जाते हैं। कोई बिरले जो भावों को शुद्ध बनाते हैं तो उनके अंदर का ऑटोमेटिक प्लान चलता है, उनके दर्शन होने की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति नाम की 3 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, ऐसे 4 और 3 7 कर्म की प्रकृतियां दब जाती हैं या कुछ उसमें से बिल्कुल नष्ट होने की तरह से हो जाती हैं, या फिर उनका उनके उदय का अभाव हो जाता, उदयाभावी क्षय या उपशम, और उनमें एक सम्यक्त प्रकृति का उदय रहता है, तब ये जीव अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती बन जाता है। अब आप कहोगे कि हम इस ऑटोमेटिक प्लांट की बात कैसे समझें? ना समझो आप, कोई बात नहीं, आप केवल सच्चे देव साथ गुरु पर श्रद्धान करो कि जो हमारे शास्त्र में भगवान ने लिखा है बस वो सही है, कोई कैसा ही हमें दिग्भ्रमित करे हम उसमें भ्रमित नहीं होंगे, बस इतना आपका बाहर का थर्मामीटर है, इसी से ही आप समझ लेना कि हम चतुर्थ गुण स्थानवर्ती बन गए। चाहे भले ही व्रत नहीं ग्रहण किया, अणुव्रत नहीं लिए, लेकिन ऐसे में अष्टमूल गुण तो हो ही जाते हैं, 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग। इन सब बच्चों को बताना कि बड़, पीपल, पाकर, उमर, कठुमर, ये 5 चीजें होती हैं जिनमें 2-3 इंद्रिय जीव होते हैं, 2-3-4 इंद्रिय जीव, इनको कभी भी नहीं खाना, ये 5, और मध्य मास मधु माने की शराब कभी नहीं पीना, अंडे मास की चीज नहीं खाना, शहद कभी भी नहीं खाना। तो इन 5 और 3 8 8 चीजों का त्याग कर देने से अष्ट मूल गुण हो जाते हैं। समझे बेटा, आज आपने आहार दिया है ना, क्या नाम है? धैर्य जैन। इसने धैर्यता के साथ बाजार की बनी हुई चीजें भी खाने का त्याग कर दिया, देखो 11 साल का बालक, और ये त्याग कर रहा है कि महीने में 1-2-4 दिन छोड़ के बाकी मैं इन चीजों को नहीं खाऊंगा, क्योंकि इसने समझ लिया अपनी माँ से कि ये चीजें अभक्ष्य होती हैं, अभक्ष माने नहीं खाने योग्य। तो अब आप चतुर्थ गुण स्थान वर्ती बन गए, समझे ना, कोई कितना मिथ्यात्व में पड़ा रहे लेकिन आप तो बन गए सम्यक दृष्टि। अब हम चलते हैं 5वें गुण स्थान में। 5वें गुण स्थान का नाम है देश संयत। ध्यान से सुनना, सबको इन गुण स्थानों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे मिथ्यात्व से भी आगे बढ़ करके सम्यक दृष्टि बन करके, और अगर कभी साधु बन जाते हैं तो अपने कर्मों का नाश करके मोक्ष जा सकते हैं। 8 पंचम काल में भले ही नहीं जा सकते, पर 7वें गुण स्थान तक आज भी मुनिराज की अवस्था प्राप्त हो सकती है। अगर कोई बालक 8 साल का है, 8 साल में भी 7.5 साल जन्म लेकर के हुए हैं, 9 महीने माँ के गर्भ के मिला करके 8 साल का बालक अगर दीक्षा ले ले तो वह भी दीक्षा का पात्र होता है, आगे जाकर स्वर्ग में जन्म लेकर के और चतुर्थ काल में आकर के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो 8 साल के बालक को इसीलिए अभिषेक करने का, पूजा करने का, आहार देने का, दीक्षा लेने का अधिकार होता है। अब इससे आगे चलते हैं, जब अणुव्रत धारण कर लेते हैं, 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा वगैरह ले लेते हैं तो 5वें गुणस्थानवर्ती बन जाते हैं। तो हमने क्या नाम बताया 5वें गुणस्थान का, देश विरत या देश संयत, ये गुणों के स्थान है, ये आगे आगे गुणों को वृद्धिंगत करने वाले हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इसका लक्षण क्या है, सम्यक दृष्टि अणुव्रत आदि 31 व्रत रूप परिणाम को देश विरत गुणस्थान कहते हैं, यानी गुणों का स्थान बढ़ा तो अणुव्रत धारण करने के भाव हुए, तब वहां पर देश प्रति जीव की प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से महाव्रत रूप पूर्ण संयम नहीं होता है, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का समापन कर देता है वो, यानी कि आगे 6 महीने से ऊपर वो कसाय नहीं करता, ऐसे जीव की व्रत लेने के भाव हो जाते हैं। देखो हमारे यहाँ बैठी है गृहस्थ में है अनीता जी, कलकत्ते वाली हैं, बड़ौदा में रहती हैं और 7 प्रतिमा ले रखी घर में रह के, और इनके पति हैं संजय जी, यहाँ अभी नहीं आए शायद, अच्छा आए, पूरा इनकी अनुमोदना इनका सहयोग करते हैं। तो मैं कहती हूँ ये भी समझो घर में रहकर साधु के समान है, ऐसे 5वें गुणस्थान, तो इनका कौन सा गुणस्थान है, 5वां, और ज्ञानमती माता जी का भी 5वां ही गुणस्थान है। स्त्रियों को 5 गुणस्थान से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन 5वें गुणस्थान का बिल्कुल अंतिम मतलब वहां पर चरम पुण्य के रूप में 5वें गुणस्थान में आरिकाएं रहती हैं। तो ऐसे 5वें गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण कसाय का नाश होता है, और प्रत्याख्यानावरण कसाय का जो 15 दिन वाली कसाय है उसका उदय रहता है, 15 दिन तक इनके कसाय रह सकती है और अप्रत्याख्यानावरण का समापन हो जाता है। आप 6वें गुणस्थान में आते हैं, इसका नाम है प्रमत्त संयत। प्रमत्त संयत का मतलब क्या है, संयत तो बन गए, महाव्रत धारण कर लिए, लेकिन वहां प्रमत्त माने प्रमाद है। कैसा प्रमाद, सोते नहीं रहते, वहां प्रमाद कैसा है, प्रत्याख्यानावरण कसाय के क्षयोपशम से सकल संयम रूप मुनिव्रत तो हो चुके हैं, किंतु संजलन कसाय और नौ कसाय के उदय से संयम में मल उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी होता है, कभी हंसते भी हैं, लोगों से बातें भी करते हैं, दोष भी लग जाते हैं, तो ये सब क्रोध भी आ जाता है, लेकिन संजलन जैसे पानी में रेखा खींची मिट गई, ऐसी कसाय का वहां पर उदय रहता है, इसी को बस प्रमाद कहा है। सोने का काम नहीं, सोना तो अपने समय समय से और अपनी क्रियाओं में पूर्ण रूप से सावधान रहते हैं, इसलिए इस गुणस्थान को प्रमत्त विरत कहते हैं। ये गुणस्थान दिगंबर मुनियों के होता है, समझे ना, दिगंबर मुनियों के 6वां गुणस्थान होता है, 6वां और 7वां ये 2 गुणस्थान दिगंबर मुनियों के होते हैं। 7वें का नाम है अप्रमत्त संयत, वहां पर ये प्रमाद भी छूट जाता है। संजलन कषाय और नौ कषाय, नौ कषाय कौन सी है, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 9 कषाय होती हैं। इनके उदय से दोष तो लगता है, लेकिन ये कषाय की तरह से बहुत कर्मों का बंद नहीं कराते, तीव्र बंद नहीं कराते, इनका मंद उदय होने से संयमी मुनि के प्रमाद रहित संयम भाव होता है, तब ये अप्रमत्त गुणस्थान होता है। इसके 2 भेद हैं, स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। पंचम काल के मुनियों को स्वस्थान अप्रमत्त गुण स्थान होता है, सातिशय अप्रमत्त आज नहीं होता। जिनको आगे की श्रेणी आठवें गुण स्थान से श्रेणी पर यानी मोक्ष जाने वाली छपक श्रेणी पर चढ़ना होता है या ग्यारहवें गुण स्थान को प्राप्त कराने वाली उपसम श्रेणी पर चढ़ना होता है तो उनकी सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान होता, उसमें परिणाम बहुत ज्यादा विशुद्ध हो जाते हैं। ऐसे इन गुण स्थानों में चढ़ने के लिए गुण स्थानों का प्रकरण जानना अपने लिए आवश्यक होता है। भगवान मुनि सुरतनाथ केवल ज्ञान के बाद जब एक माह की आयु शेष बची है तो इसी प्रकार से अब गुण स्थानों में आरोहण कर रहे हैं। सातवें गुण स्थान तक तो उनका दीक्षा लेने के बाद ही था, अब आगे की व्यवस्था को आप इसी प्रकार से उनके पुण्य चरित्र के माध्यम से श्रवण करते रहें, यही आप सबके लिए मंगल प्रेरणा है। जय लो मुनि सुरतनाथ भगवान की।